नमस्कार, जनसत्ता में सुनी सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत और रूस दोनों देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, तो वहीं रूस का लूना 25 मिशन 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया था, ये 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। वहीं रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। रूस ने इससे पहले सोवियत युग में आखिरी बार 1976 में लूना 24 मिशन लॉन्च किया था। भारत और रूस के बीच चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ पर पूरी दुनिया की पैनी नजर बनी हुई है। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलो है, तो वहीं चंद्रयान का वजन 3800 किलो है। लूना 25 का अधिशेष इंजन भंडारण ईंधन दक्षता से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, जिसके कारण ये अधिक सीधा मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। इसके विपरीत चंद्रयान 3 की ईंधन वहन क्षमता के कम होने के कारण चंद्रमा तक पहुँचने के लिए चंद्रयान को ज्यादा घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता है। सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न जिलों से 8 आग्नेय अस्त्र, 112 कारतूस तथा 6 विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह बरामदगी बुधवार को विष्णुपुर, चुराचांदपुर, तेंग नौपाल, कांगपोखपी और इम्फाल वेस्ट जिलों से की गई। बयान में बताया गया कि गोलीबारी की कुछ छोटी मोटी घटनाओं और कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने की वजह से राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है। तेंग नौपाल जिले में तलाशी अभियान के दौरान 6 बंकर भी नष्ट कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को नशीले पदार्थ और सीमा मामले के अधिकारियों ने असम के 4 लोगों को इम्फाल ईस्ट जिले के मंत्री पोखरी क्षेत्र से कोडिन फॉस्फेट, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक सिरप की 1240 शीशी के साथ गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पिछले 3 दिनों में कम से कम 71 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि अधिकांश हिस्सों में बारिश कम हो गई है, लेकिन कई जगहों पर अब भी लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से 3 नेशनल हाईवे सहित लगभग 700 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि पोंग बांध के पास कांगड़ा के निचले इलाके से 800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया, क्योंकि बांध में जल स्तर बढ़ गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार राज्य में भारी बारिश और लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 71 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन और बाढ़ के कारण ढही इमारतों के मलबे से बुधवार को शव निकाले जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ गई। ओडिशा में पिछले कई दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने की वजह से राज्य में 12 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ओडिशा में आसमानी कहर दिखा हो। हर साल बरसात के वक्त ओडिशा में ऐसी स्थिति बन जाती है। बताया जा रहा है कि बालासोर के जलस्वेर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। मयूरभंज में एक महिला ने जान गंवाई। भद्रक के खेरागांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी वजह से कुल आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है और जो आगे और ज्यादा बढ़ सकता है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बड़ी बात यह है कि इस आकाशीय बिजली का शिकार बच्चे भी हो गए हैं। कुछ बच्चों की मौत की खबर भी आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार आज महाराष्ट्र के बीड़ में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली उस चर्चा के बीच हो रही है जो उनके भतीजे अजीत पवार के साथ उनकी हालिया मुलाकातों से पैदा हुई। शनिवार को पुणे में कारोबारी के घर शरद और अजीत पवार ने सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया कि अजीत ने चाचा शरद पवार को मोदी कैबिनेट में पद का ऑफर दिया है। वहीं शरद पवार की भीड़ रैली अजीत के विद्रोह के बाद अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के प्रयासों का है। अजीत के भाजपा के पक्ष में जाने के एक दिन बाद कराड़ में यशवंत राव चव्हाण स्मारक के दौरे के दौरान एनसीपी प्रमुख ने कहा था कि मैं राज्य और देश की यात्रा करूंगा और लोगों से जुड़ूंगा। ये भविष्य के लिए मेरी रणनीति है। मैं जनता तक पहुंचने जा रहा हूं। अपने भतीजे के साथ उनके मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों के बाद से शरद पवार ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसे में वह भीड़ में जो भी कहेंगे उसका बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में गोलीबारी के आरोपी और आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को रेलवे ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 31 जुलाई को चेतन ने चलती ट्रेन में सीनियर टीकाराम मीणा सहित 3 अन्य यात्रियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। टीकाराम मीणा के अलावा मृतकों की पहचान पालघर के नाल सोपोरा में रहने वाले अब्दुल कादर भाई मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला, बिहार के मधुबनी के निवासी असगर अब्बास शेख और सैयद एस के रूप में हुई थी। चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश 14 अगस्त को आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुंबई सेंट्रल की ओर से जारी किया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।